ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहला संशोधन अध्यादेश 2082 राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय जनगणना 2078 के आधार पर क्लस्टर का प्रतिशत किया जाएगा मिलान। वैदेशिक रोजगार में जाने वालों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क महंगा होने के कारण पुनरावलोकन करने की तैयारी की गई है। श्रम मंत्री राजेन्द्र सिंह भंडारी द्वारा जानकारी। शीतलहर के कारण तराई मधेश के जिले प्रभावित, आवश्यक सतर्कता अपनाने की चिकित्सकों द्वारा सलाह। और यूरोपीय संघ यूक्रेन को आगामी 2 वर्षों तक सैन्य तथा आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए 90 अरब यूरो ब्याज मुक्त कराएगा ऋण उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहला संशोधन अध्यादेश 2082 जारी किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के मुताबिक मंत्री परिषद की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहला संशोधन अध्यादेश आज जारी किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोयराला ने दी। मंत्रिपरिषद की कल की बैठक में राष्ट्रीय जनगणना 2078 के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न क्लस्टरों का प्रतिशत मिलान करने के लिए निर्वाचन आयन में संशोधन करने का निर्णय किया गया और राष्ट्रपति के समक्ष अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की गई थी। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम समूहों के लिए प्रतिशत निर्धारण के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल के अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या के नए तथ्यांक के अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य आयन 2074 की अनुसूची परिवर्तन करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। नेकपा एमाले की नव निर्वाचित केंद्रीय कमेटी की पहली बैठक में संशोधित विधान और राजनीतिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। बबरवाहन में आज हुई बैठक में विधान प्रकाशन और पार्टी पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्य विभाजन करने की जिम्मेदारी सचिवालय को दी गई है। एमाले के सचिवालय में 19 सदस्य पदाधिकारी रहने का प्रावधान है। वहीं बैठक ने केंद्रीय कमेटी की दूसरी बैठक इसी पूछ 26, 27 और 28 गति को काठमांडू में आयोजित करने का निर्णय किया है। साथ ही पदाधिकारियों और केंद्रीय सदस्यों में से सेवानिवृत्त नेताओं को शामिल कर एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करने का भी निर्णय किया है। बैठक के बाद संबोधन करते हुए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि पार्टी की नव निर्वाचित केंद्रीय कमेटी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष ओली ने महाधिवेशन के दौरान बने गुटों और प्रतिस्पर्धा को भुलाकर एकजुट होकर पार्टी के काम में लगने का आग्रह किया। अध्यक्ष ओली ने कहा कि महाधिवेशन में चुनाव लड़ते समय बने गुट और पैनल महाधिवेशन का परिणाम आते ही समाप्त हो गए हैं। अध्यक्ष ओली ने पार्टी के भीतर ताना शाही और अधिनायक बाद है, ऐसा प्रचार करने से प्रभावित न होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एमाले पर देश को उचित मार्ग दिखाने और सही गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है और इसे पूरा करने के लिए एकीकृत और अनुशासित पार्टी का निर्माण करना होगा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगार में जाने वाले कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क में पुनरावलोकन करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन दिवस के संदर्भ में आज मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री राजेन्द्र सिंह भंडारी ने कहा कि वैदेशिक रोजगार के लिए निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अत्यंत महंगा होने के कारण पिछली बार हुई शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। मंत्री भंडारी ने यह भी कहा कि वैदेशिक रोजगार में जाने वालों को कुशलता आधारित प्रशिक्षण देने के बहाने विभिन्न ठगी की घटनाएं बढ़ने से सरकार स्वयं प्रशिक्षण देने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वैदेशिक रोजगार के नाम पर होने वाली ठगी को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्य शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सहित तराई के जिलों में आज सुबह से पश्चिमी हवा के प्रभाव से घना कोहरे के साथ शीतलहर शुरू होने के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है। घने कोहरे के साथ चली शीतलहर के कारण आज सुबह से ही धनुषा के जनकपुर धाम सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में अत्यधिक सर्दी बढ़ गई है। घने कोहरे के कारण जनकपुर, भैरवा और नेपालगंज में विमान अवतरण के लिए आवश्यक विजिबिलिटी न होने के कारण विमान सेवा संचालित नहीं हुआ है। ये जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दी। अत्यधिक मात्रा में सर्दी बढ़ने के बाद सर्दी के कारण बच्चे तथा वृद्ध नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। शीतलहर से बचने के लिए आवश्यक सतर्कता अपनाने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि देश अनिश्चितता के मार्ग से निश्चितता के सकारात्मक मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। वर्तमान सरकार के गठन के 100 दिन के संदर्भ में नेपाल टेलीविजन और राजस्व से बातचीत करते हुए नेपाल सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री खरेल ने कहा कि आगामी फागुन 21 गते होने वाले चुनाव की सुनिश्चितता हो चुकी है, इसलिए इस पर शंका करने का कोई औचित्य नहीं है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने गत भाद्र 23 और 24 गते के जंजेड आंदोलन के दौरान घायल हुए पत्रकारों को सम्मान तथा आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मंत्रालय में आज आयोजित कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने 4 घायल पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में संचार मंत्री खरेल ने कहा कि विभिन्न आंदोलन सहित अन्य कार्यक्रमों में अग्रिम पंक्ति में कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार आंदोलनरत पक्ष या आयोजक तथा संचार संस्थान जिम्मेदार और उत्तरदायी हो, ये आवश्यक है। जंजीर आंदोलन के दौरान संचार क्षेत्र में लगभग 78 करोड़ की क्षति हुई है, ऐसी जानकारी संचार मंत्री खरेल ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पेयजल मंत्रालय की जिम्मेदारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी को सौंपी है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर भाद्र 27 गते गठित मौजूदा मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री द्वारा संभाले जा रहे पेयजल मंत्रालय का कार्यभार भी श्रम मंत्री भंडारी को सौंपा गया है, ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज रूपंदेही अदालत से रिहा हुए हैं। उच्च अदालत तुलसीपुर की बुटवल इजलास ने कल रवि लामिछाने के विरुद्ध जमानत लेकर रिहा करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार उन्हें जिले में ही उपस्थित कराकर प्रक्रिया पूरी कर जमानत पर रिहा किया गया है। सरकार ने गत भाद्र 23 और 24 गते के जंजेड आंदोलन में घायल हुए लोगों के वर्गीकरण को तीव्रता से आगे बढ़ाया है। जंजेड आंदोलन में घायल हुए व्यक्ति की अपांगता की स्थिति और गंभीरता के आधार पर आर्थिक सहायता सहित जीवन निर्वाह के लिए सहायता उपलब्ध कराने के संदर्भ में मंत्रिपरिषद द्वारा गत मार्गशीर्ष 22 गते स्वीकृत कार्यविधि के आधार पर वर्गीकरण को त्वरित किया गया है, ये जानकारी गृह मंत्रालय ने दी। गृहमंत्री ओम प्रकाश अरियाल के सचिवालय के अनुसार जिला प्रशासन कार्यालय वर्गीकरण की सिफारिश करेंगे और उसी आधार पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय प्रमाणित करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव को विश्वास मत प्राप्त हुआ है। प्रदेश सभा की आज शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री यादव ने संविधान की धारा 168 की उपधारा 4 के अनुसार प्रदेश सभा में विश्वास के लिए मत मांगने पर उनके पक्ष में 100% मत प्राप्त हुआ। प्रदेश सभा की आज की बैठक में विभिन्न दलों के 52 प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थे, जिन सभी ने मुख्यमंत्री यादव को विश्वास मत दिया। ये घोषणा बैठक की अध्यक्षता कर रही उपसभामुख बबीता राउत ईसर ने की। नेपाली कांग्रेस के प्रदेश संसदीय दल के नेता और पार्टी के प्रदेश सभापति रह चुके यादव पिछले मार्गशीर्ष 19 को 7 दलों के 77 प्रदेश सभा सदस्यों के समर्थन में मुख्यमंत्री बने थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ईयू यूक्रेन को आगामी 2027 तक की अवधि के लिए 50 अरब यूरो का आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान करेगा, जिसमें से 17.3 अरब यूरो अनुदान और 33 अरब यूरो ऋण के रूप में होंगे। ये राशि यूक्रेन को अपने संसाधनों को सैन्य खर्च पर केंद्रित करने में मदद करेगी। इसके अलावा यूरोपीय शांति सुविधा के तहत अलग से 5 अरब यूरो का सैन्य सहायता पैकेज भी मंजूर किया गया है, जिसका उपयोग यूक्रेन अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए कर सकता है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहला संशोधन अध्यादेश 2082 राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रीय जनगणना 2078 के आधार पर क्लस्टर का प्रतिशत किया जाएगा मिलान। वैदेशिक रोजगार में जाने वालों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क महंगा होने के कारण पुनरावलोकन करने की तैयारी की गई है। श्रम मंत्री राजेन्द्र सिंह भंडारी द्वारा जानकारी। शीतलहर के कारण तराई मध्यप्रदेश के जिले प्रभावित, आवश्यक सतर्कता अपनाने की चिकित्सकों द्वारा सलाह। और यूरोपीय संघ यूक्रेन को आगामी 2 वर्षों तक सैन्य तथा आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 90 अरब यूरो ब्याज मुक्त कराएगा ऋण उपलब्ध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।